तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। से सजा के हमको समर्थ बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया।
ओम शांति। साधना पथका आज का छठवा दिन। मैं बाप समान शक्तिशाली आत्मा हूँ, सदा स्वयं को शक्तिशाली आत्मा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा का हर संकल्प शक्तिशाली होगा, हर संकल्प में सेवा समाई हुई हो, हर बोल में बाप की याद समाई हो, हर कर्म में बाप जैसा चरित्र समाया हुआ हो, तो ऐसी शक्तिशाली आत्मा अपने को अनुभव करते हो। मुख में भी बाप, स्मृति में भी बाप और कर्म में भी बाप के चरित्र, इसको कहा जाता है बाप समान शक्तिशाली। ऐसे हो, एक शब्द बाबा, लेकिन यह एक ही शब्द जादू का शब्द है। जैसे जादू में स्वरूप परिवर्तन हो जाता है, वैसे एक शब्द बाबा समर्थ स्वरूप बना देता है। गुण बदल जाते, कर्म बदल जाते, बोल बदल जाते, यह एक शब्द ही जादू का शब्द है। तो सभी जादूगर बन गए हो ना, जादू लगाना आता है ना। बाबा बोला और बाबा का बनाया, यह है जादू। अव्यक्त मुरली, 11 अप्रैल 1981। तो तपस्या की इस भट्टी में पहले दिन हमने सूक्ष्म आसन, स्थूल आसन, सिंहासन का अभ्यास किया। तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। दूसरे दिन अपने अंदर राग का जो बीज है, उस बीज को भस्म किया। मैं राज ऋषि हूं, जहां जहां राग है, जिस जिस में राग है, उस राग में क्या दोष है, उसका गहन चिंतन किया और राग के बीज को निकाल देना है। आज के वहां वाक्य है बाबा के, अपने अंदर जो काम का बीज है, अपने अंदर जो देहभान का बीज है, उस बीज को ही भस्म कर दो। तीसरे दिन हमने प्रभु प्रेम का अनुभव किया। मैं आत्मा कहाँ हूं, निरंतर एक छत्र छाया में, एक कैनपी में एक छत्र है जो निरंतर मेरी रक्षा करता है। चाहे मैं कहीं पर भी चला जाऊं, परंतु वो छत्र हमेशा मेरे ऊपर है, मैं उस छत्र छाया के अंदर सुरक्षित हूं। चौथे दिन हमने देखा मैं कौन हूं, विजयी, कर्मेंद्रिय जीत, विकारों जीत, प्रकृति जीत, अपनी कमजोरी पर जीत, विक नेगेटिव व्यर्थ। तो जीत का अभ्यास किया, जीत एक अभ्यास है, विजय की जिसको आदत पड़ गई है वो जीतते ही जाता है, और हार की जिसको आदत पड़ गई है वो हर चीज में हारता जाता है। तो विजय क्या है? आदत, विजय की आदत डालनी है। जो भी करेंगे उसमें विजय तो हमारी होनी ही है, पहले ही संकल्प दे दिया है। पांचवें दिन हमने देखा मैं मुक्त हूं, उसमें चार बातें थी, मैं जीवन मुक्त हूं, कोई बंधन मुझे स्वीकार नहीं है इस संसार का। अपने मन को शक्तिशाली संकल्प क्या देना है? इस संसार का कोई भी बंधन मुझे स्वीकार नहीं है, कोई भी पिंजड़ा, कोई भी सलाखे, कोई भी कारागृह मुझे स्वीकार नहीं, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो। मुक्ति। दूसरा, ट्रस्टी हूं, लैक ऑफ ओनरशिप, मालकियत का भाव नहीं, कोई भी चीज का स्थूल मैं मालिक नहीं हूं, मुझे संभालने के लिए दिया गया है। तीसरी बात देखी थी, मर चुका हूं, मैं मर चुका हूं, रात को सोते समय यह अभ्यास करना है कि मैं आत्मा, ये जो शरीर है ये आत्मा, अब मैं इसे छोड़ के चली गई। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ के चली गई, अब इस दृश्य को क्रिएट करना है। हॉस्पिटल में मरना चाहोगे या कमरे में? अगर हॉस्पिटल में तो वो भी दृश्य देख लेना, आईसीयू मर गया, ठीक है, फिर बाहर इन्फॉर्म किया गया कि गया, फिर न्यूज फैली, फिर कुछ लोग फोटो ढूंढने लगे वहां लगाने के लिए, कब था, कहां था, डेट और वो सब, फिर मॉर्चुरी, फिर मॉर्चुरी का अनुभव करो, डेड बॉडी पड़ी है, बाकी दूसरे मृत मित्र गण साथ में है, अगर है तो वहां पे थोड़ी पूरी रात उस ड्रॉवर में, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा पूजा पाठ और गीत बज रहा है, कौन सा, अब घर जाना है, सुनते रहना, और फिर चार धाम घुमा रहे, देखना, किसी किसी को बहुत जल्दी है, अरे जल्दी करो, कोई फोन पर थोड़ा मैनेजमेंट कर रहा है और हम चुपचाप कुछ नहीं कर सकते, बोल कर भी, फूल माला पड़ रही है, फिर उधर लेके गए, फिर वहां पर जलाया जा रहा है, अपने मृत्यु का दर्शन कि गया, कुछ नहीं रहा, कहां है वो जो हमारा जमा किया हुआ था। फिर अपने कमरे को देखो, अब ये वस्तुओं का क्या, सारी गई, एक एक सामान, एक एक वस्तु, सब इधर उधर जा रही है, जिसमें मेरा कितना मोह था, चप्पल, कपड़े, किताबें, बैच, और मेरा बैंक अकाउंट, और वो एटीएम कार्ड, और वो मोबाइल, सब गया, कुछ नहीं बचा। और ये भी देखो, जहां हम काम करते हैं वहां दूसरा आके अच्छे से काम कर रहा है, दो ही दिन में सब कुछ सामान्य हो गया है, किसी को याद तक नहीं वो था, गया। इस दृश्य को देख लेना, स्पष्ट देख लेना। हलवा खा रहे, मरो हे जोगी मरो, ये मरण है मीठा, मरो हे जोगी मरो, ये मरण है बहुत मीठा। जब शरीर में है तभी अपनी मृत्यु को देख लेना। तो ये जो जीवेशना है, ये जो जीवन के प्रति अत्यंत मोह है, ये कम हो जाएगा। कोई मरना नहीं चाहता है, मृत्यु का भय है अंदर। अपनी मृत्यु को अपने ही आंखों से देख लेना। और चौथी बात देखी थी, झटकू धक से जीवन के निर्णय तुरंत कर लेने, सोचते नहीं बैठना है करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, अब करूँ कि बाद में करूँ, तुरंत। तो ये थी 5 दिन की तपस्या। आज तपस्या का 6वां दिन। अपने मन को समझाना है, मैं तपस्या में बैठा हूँ नदी के तट पर, तप की नदी बह रही है, वहाँ पर मैं तपस्या में बैठा हूँ तपस्वी। और अपने मन को संकल्प देना है। तो आज का समान है, मैं बाप समान कैसी आत्मा हूँ, शक्तिशाली, पावरफुल। अभी अभी मुरली चली थी, क्या कहा था बाबा ने उसमें, पावरफुल माइंड हो, यही शब्द थे इंग्लिश। ये बाप की आज्ञा है और ये बाप का की राय है। क्या अभी जो मुरली चली, ये बाप की आज्ञा भी है और ये बाप की राय है, 3 रीति से और 3 रूपों से सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा, पावरफुल लवफुल और नॉलेजफुल। 3 रीति से और 3 रूपों से सेवा करो, ये बाप की आज्ञा है और ये बाप की राय है। माइंड पावरफुल हो, माइंड कैसा हो, शक्तिशाली मन हो। तो यहां बाबा कह रहे हैं सदा स्वयं को शक्तिशाली आत्मा, फिर से वही शब्द बार बार आता है, अनुभव करते हो। एक है शक्तिशाली मानना, शक्तिशाली जानना, शक्ति के बारे में पढ़ना, शक्ति की साधना करना। हर व्यक्ति शक्तिशाली बनना चाहता है। संसार में इतने सारे प्रयोग क्यों किए गए, तंत्र मंत्र ये सब क्या है, किस लिए है? हर एक क्या करना चाहता था, राक्षस क्यों तपस्या करने बैठ जाते थे, पावरफुल बनने के लिए। तो अनुभव करते हो, अनुभव खाली रटन नहीं, अनुभव कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं। शक्तिशाली आत्मा का हर संकल्प शक्तिशाली होगा, हर संकल्प में सेवा समाई होगी। जो संकल्प शक्तिशाली है उसमें स्वतः ही सेवा है, क्योंकि वो बीज है, बीज ही शक्तिशाली है, उससे जो निकलेगा वो शक्तिशाली ही होगा, सेवा होगी। हर बोल में बाप की याद समाई हुई है, हर कर्म में बाप जैसे चरित्र समाये हुए। बोल और कर्म पर ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, इटिकेट्स मैनर्स इस पर काम करने की आवश्यकता नहीं है, काम किस पे करना है, मन पर। क्योंकि यहां अगर परिवर्तन हो जाए तो यहां का परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। और केवल इसको छोड़ दिया और केवल इस पर काम किया तो ये जो परिवर्तन है, ये कॉन्शियस लेवल का परिवर्तन है, कॉन्शियस माइंड का परिवर्तन है। इसमें ढेर सारी प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती है और जो अपने आप टूटती है, और फिर पश्चाताप होता है, और फिर दुख होता है, और फिर गलतियां होती है। आज की मुरली में इसके बारे में भी चर्चा है। माफी नहीं होगी, हल्के हो जाओगे, ऑनेस्ट पर बता दो जो भी गलतियां की है। ब्राह्मणों के बीच, भाई बहनों के बीच काम विकार बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट है आज की साकार मुरली। तो यहां गलतियां होती रहेगी, पर गलती की, पश्चाताप किया, थोड़े देर ठीक रहे, फिर गलती की, फिर पश्चाताप किया, फिर ठीक, फिर गलती, फिर बाबा को खत लिखा, फिर गलती, फिर ठीक। ये आदत पड़ गई है, विकार की, गलती की, पश्चाताप की। इसको अपना क्या नहीं बना देना। एक मुरली थी, आदत नहीं बना देना इसको। 3 P's कौन कौन से हैं? 3 P's को अपनी आदत नहीं बना देना। अव्यक्त मुरली है 79 की शायद। पाप किया, फिर पाप किया, फिर पश्चाताप किया कि अभी फिर से नहीं करेंगे, और फिर प्रतिज्ञा की। इसी को अपनी आदत बना दी, रीति रस्म बना दी है ब्राह्मण परिवार की। पाप करो, प्रतिज्ञा करो, पश्चाताप करो, पाप करो, प्रतिज्ञा करो, पश्चाताप करो, फिर पाप करो, फिर पश्चाताप करो. क्योंकि ये जो गलतियां हो रही है वो कॉन्शियस लेवल पे हो रही है. परिवर्तन जो कर रहे हैं हम, कर्मों में परिवर्तन कर रहे हैं. आज ये किया, कल से ये नहीं करेंगे. कर्म पर कर्म के तल पर परिवर्तन हो रहा है. आज ये बोला, अगली बार से ये बोलना नहीं चाहिए, बोल के तल पर परिवर्तन हो रहा है. ऐसा परिवर्तन कभी भी चिरस्थाई नहीं हो सकता. परिवर्तन अंतर मन की गहराई में हो, सबकॉन्शियस माइंड में परिवर्तन हो. यहां अगर परिवर्तन हो जाए तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं. जैसे किसी को डायबिटीज हो गया और उसको डॉक्टर ने कहा कि आज से शुगर बंद, वो कहता ठीक है शुगर बंद. अभी अभी किसी ने भेजा था एक डिब्बा लड्डू वाला मीठे. अब क्या करे, ठंडी का मौसम है और पावरफुल लड्डू भेजे हुए हैं, क्या करे. अब किसी को दे भी नहीं सकते, इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि इतना बड़ा डिब्बा किसी को देते. हमारे लिए भेजा गया है क्या करे. ज्यादा से ज्यादा उसको अंदर वाली जो अलमारी है उसके अंदर डाल दो. हमने छिपा के रखा है, पर कहां छिपाया है मुझे पता है बिल्कुल आंखों के सामने नहीं रखना है. तो ये जो परिवर्तन कर रहे हैं ये बाहरी परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन है. यहां पे चेतना में परिवर्तन नहीं हो रहा है. और यहां पे हम पहुंचे कैसे, पर यहां तो पहुंच ही नहीं सकते, हाथ ही नहीं जाता है वहां तक. व्हाट आर द वेज टू एक्सेस सबकॉन्शियस माइंड. जब चेतन मन शांत हो जाए, एक अर्ध निद्रा सी अवस्था आ जाए, फिर संकल्प देना होता है. और वो समय है रात को सोते समय का, या फिर ट्रिपल लॉक वाला बैठ के जो हम करते हैं, जो बताया करने के लिए कि एक घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा एकाग्र बैठ जाए और फिर धीरे धीरे शरीर को देखना, श्वास को देखना. और धीरे धीरे एक अर्ध निद्रा सी अवस्था आती है, सुषुप्ति की अवस्था, जिसमें ना नींद है ना जागरण है. वो जो गेट है, क्योंकि एक बहुत बड़ी दीवार है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच, और ये दीवार खुलती नहीं है. ये जो दीवार है बहुत मोटी है, चाइना वॉल दीवार है चीन. ये दीवार जो है ये तभी खुलती है उठते ही और रात को सोते समय. रात को सोते समय ये जो प्री कॉन्शियस की दीवार है ये ऊपर उठी जाती है. और फिर जो संकल्प यहां से यहां दिए जाते हैं वो सीधा सबकॉन्शियस, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तर्क वितर्क नहीं करता है. उसको अगर यहां संकल्प दिया जाए सोते समय, मैं गधा हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, सुबह उठते ही अपने आप संकल्प आएगा, मैं भैंस हूं, कहां है मेरा चारा जो भी संकल्प उसको दिया जाए अगर वो यहां पहुंच गया तो काम हो गया, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं. अगर उसको ये कहा गया, ये जो शक्कर है मेरे लिए जहर है, मेरे लिए जहर है, मेरे लिए जहर है, वो संकल्प चला गया एकदम अंदर, बोलते 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 बोलते. पावर ऑफ सजेशन, पावर ऑफ रेपिटेशन, पावर ऑफ अफर्मेशन, ये अंदर चला गया, इतना डीप चला गया है. फिर दिन में हम कुछ काम नहीं कर रहे, दिन में अपना काम कर रहे, जैसे शक्कर सामने आई, ये जहर है, अपने आप आएगा, ये मेरे लिए है ही नहीं, ये मेरा भोजन ही नहीं है. ये कहां से निकला, यहां से निकला. अगर ये यहां से नहीं निकलता और केवल कॉन्शियस माइंड, तो यहां दमन होगा, फिर दमन होगा और अपने आप को पीड़ित करेंगे, दुखी होंगे यहां पर कि बहुत इच्छा है पर नहीं कर सकते, इच्छा बहुत है नहीं कर सकते. अपने आप उतावलापन होगा, व्याकुलता होगी, क्योंकि परिवर्तन इस स्तर पर है. परिवर्तन इस स्तर पर करना है तो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने की सबसे पहली विधि है रात को सोते समय. दूसरी विधि है योग निद्रा, दिन में कई बार लेट जाना 15 मिनट के लिए और फिर अपने शरीर को रिलैक्स कर देना. इसके पहले भी योग निद्रा पर कभी क्लास की थी, 8 स्टेप्स, शरीर को रिलैक्स कर देना, इस पर फोकस करना, रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, पूरी चेतना को शरीर में घुमाना और फिर एक इमेजिनेशन क्रिएट करना, एक विजुअलाइजेशन, और उसमें प्रवेश करना और बराबर अलार्म लगा के रखना 20 मिनट्स. 20 मिनट्स के बाद में बाहर निकल के आ जाना है, सो नहीं जाना है. तो योग निद्रा से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा जा सकता है. तीसरा है विजुअलाइजेशन, एक पिक्चर क्रिएट करना, क्योंकि हमारे यहां का जो माइंड है इसको पिक्चर्स की भाषा समझ में आती है, ये तर्क की भाषा समझ में आती है बाह्य को. दाया जो है राइट, वो इमोशन समझ में आते हैं उसको, उसको वो तुम्हारे तर्क नहीं समझ में आते, श्रीमत काम महाशत्रु है, ये सब इसको समझ में नहीं आता है, ये इसको समझ में आता है, इसको भावनाएं समझ में आती है, इसको फीलिंग्स इमोशन समझ में आते हैं, इसको पिक्चर समझ में आते हैं, इसको मूवीज समझ में आती है, इसके लिए जो मूवी देखी थी 10 साल पहले, अचानक वो मूवी का कोई दृश्य कोई डायलॉग अपने आप याद आ जाता है, और कोई किताब पढ़ी थी वो तो याद ही नहीं आती, क्यों? वो 2D है, 3D जो होगा और जो मूविंग होगा वो ज्यादा याद आता है, मेंटल मूवी, इसको कहते हैं मेंटल मूवी टेक्निक, मेंटल मूवी। एथलीट्स जो होते हैं देख लेते हैं अपने आप को, मैं जीत रहा हूं, पहले ही देख लेते हैं, रोज देखते हैं, किसी को भाषण देना है, भाषण देने आता नहीं है, चेयर पे बैठ के इमेजिन करते हैं मैं भाषण दे रहा हूं बिना डरे, जिसको स्टेज फ्राइट है वो देखते हैं, जिसको बोलने में कठिनाई है वो देखता है मैं धारा प्रवाह बोल रहा हूं, मन में देखते हैं, और फिर देखते 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 वो चला जाता है डर। तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या, कौन सी भाषा समझती है उसको? विजुअलाइजेशन की, पिक्चर्स की भाषा समझ में आती है। बच्चों को अगर ABCD कैसे सिखाते, ए फॉर एप्पल, तो वो ए को एप्पल के साथ जोड़ता है, एसोसिएट करता है, ये भाषा उसको समझ में आती है। विजुअलाइजेशन से सबकॉन्शियस तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि परिवर्तन हमको बहुत गहरे तल पर करना है, क्योंकि जो विकार है वो बहुत डीप है, बहुत डीप, बाबा ने कहा बीज है वो, उस बीज तक पहुंचे कैसे, उसको भस्म तो बात की बात है, ये जो बीज है मेरी एक कमजोरी है, पर वो इतनी गहरी है, इतनी गहरी है, जब तक लोग मेरी तारीफ करते मुझे ठीक लगता है, जैसे ही कोई मेरी निंदा करता है एकदम भयंकर हलचल होने लगती है, अब क्या करें, ये तो एक कमजोरी है, पर इसको मैं कैसे पकड़ू, ये मेरे पकड़ से बाहर है, क्योंकि बहुत डीप है ये। हाँ, जब तक तारीफ कर रहे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तब तक ठीक लगता है, एक आके कुछ कह देता है गया। तो यहां पर वही टेक्निक यूज करनी है, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष। जरूर मेरा लगाव है स्तुति में, इसीलिए तो निंदा में इतना दुख होता है, लाइक्स डिसलाइक्स लाइक्स डिसलाइक्स अनित्य है, ये जो स्तुति कर रहा है ना ये भी अनित्य है, वो जो निंदा कर रहा है वो भी अनित्य है, दोनों चीजें अनित्य है, तो ये दोनों पर अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास निंदा पर नहीं स्तुति पर करना है। ऐसा क्या मिल जाता है कोई स्तुति करता है तो, कोई आके कहता है आपको देख के ऐसा लगता है एक महान योगी हो, और थोड़ी देर के बाद कहता है कोई दूसरा ये ढोंग बहुत हुआ, बहुत नाटक कर लिया, बंद करो अभी, भाषण तो बहुत ठोक लिए, प्रैक्टिकल में तो कुछ दिखाई नहीं देता, जीवन में कॉमन सेंस भी नहीं है, एकदम हर्ट अभी। लाइक्स डिसलाइक्स दोनों के प्रति वैराग, अनित्य है ये, क्षणभंगुर है ये, जो स्तुति करने वाला भी क्षणभंगुर, ये भी क्षणभंगुर है, ध्रुव मैं हूं आत्मा बस अचल। तो परिवर्तन गहरे तलों पर होना चाहिए, तो उसके लिए चेतन मन को शांत कर देना, इसके लिए योग की जो अवस्था है होती है मेडिटेशन की, माइंड एकदम शांत होता है, और वो अर्धनिद्रा की जो अवस्था होती है उसमें अंदर प्रवेश किया जाता है, ये कॉन्शियस प्री कॉन्शियस का बैरियर थर्ड से टूटता है, और फिर संकल्प अंदर दे दो। ये जो निंदा वाले संकल्प होते हैं ना, जो किसी ने निंदा की वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, बहुत एक्यूरेट। सीधा इसने मुझे 10 साल पहले ये कहा था, वो अब तक भूला नहीं है, उसके बाद उसी व्यक्ति ने 10 साल में 1000 बार मेरी तारीफ भी की है, पर वो बिल्कुल याद नहीं है मुझे, कौन सा उस तुमने ये बोला था, वो नहीं भूला है, उसको तो ऐसे छाती से पकड़ के रखा है प्रयोग करने के लिए कि तुमने ये बोला था। हाँ, खुलता है ये बैरियर, कोई समझना है किस तरह काम करता है ये बैरियर कब खुलता है, कैसे खुलता है, और इस बैरियर को कैसे तोड़ के हम अंदर पहुंचे, ये अंतर्मन है, इसमें केवल इस जन्म का ही नहीं, इस जन्म के पाप भस्म होने के बाद ऊपर के नीचे के ऊपर आएंगे, इस जन्म के सारे संस्कार खत्म हो गए, फिर अचानक इसकी नीचे परते 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 ही परते परते ही परते एक एक जन्म की परते ऊपर आएगी, परंतु पहले हमारा लक्ष्य है ये खस्म भस्म करना और नीचे के ऊपर नहीं आने देना, इसको भी भस्म करते जाना धीरे 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 धीरे, और ये होगा। देखने से, इसको साक्षी भाव से देखना है, इस सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ उत्पन्न होता है, एक एक विचार को देखना है कि कैसे ये विचार आया। आया ठीक है, ये नहीं अरे ये विचार क्यों आया, तो बहुत खराब है, मैं तो ब्राह्मण हूं ब्रह्मा कुमार, ये तो आने ही नहीं चाहिए। आया ना, देखो अब उसको। तटस्थ का क्या अर्थ है? नदी के तट पर बैठकर नदी के प्रवाह को देखना। मैं तटस्थ अर्थात नदी के तट पर बैठा हूं, ये नदियां बह रही है और हर बार नदी अलग है। ये जो पानी है ना, जो एक मिनट पहले था, वो पानी नहीं रहा। यू कैनॉट स्टेप इन टू द रिवर ट्वाइस। कहा जाता है एक घंटे पहले जिसने ये क्लास अभी चालू की थी और मैं, ये दो अलग अलग है, मैं बदल चुका हूं, सब बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यहां जितने लोग बैठे हैं 15 मिनट पहले जो थे, अब वो नहीं रहे, वो बदल चुके हैं। अगर ये एक रास्ते से मैं दूसरे तक पहुंचता हूं तो क्या वो वही रास्ता है? नहीं, कितना चेंजेस हो गया, उसमें धूल नहीं आ गई। ये हवा, क्या वो वही हवा है 15 मिनट पहले थी? नहीं, बदल चुकी है, सब बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। पानी में पैर डाले, पैर निकाला, फिर से दूसरा पैर डाला, क्या वो वही पानी है? पानी तो वो पहला वाला बह चुका है। कितना अनित्य है संसार, हर चीज अनित्य है, हर चीज अनित्य है। इस अनित्य का ही चिंतन करते रहना है। यहां जो कुछ हो रहा है सब अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, कुछ भी स्थिर नहीं है। जब ये स्थूल चीजें ही स्थिर नहीं है, शब्द भी स्थिर नहीं है, कुछ भी यहां पर परमानेंट नहीं है। इसलिए एक डिटैचमेंट, तथस्थ भाव से देखना। जैसे हम रोड पर खड़े हैं, गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, बस देख रहे। वैसे ही ये जो मन है, ये एक झाड़ है और ये विचार है पक्षी है। मैं इस झाड़ को देख रहा हूं, ये पक्षी आया बैठा, अरे रे रे रे, ऐसा नहीं करना, ये क्यों आया, ये तो मोह का है, आने दो, बैठेगा चला जाएगा। अच्छा ये क्यों आया, वैराग का है ये तो, वो भी चला जाएगा। ये क्यों आया, ये तो अपवित्रता है, आने दो बैठने दो, थोड़ी देर बैठेगा चला जाएगा। ये तो पवित्रता है, उसमें भी लगाव नहीं, ना इधर ना उधर, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ना नकारात्मक ना विधायक, दोनों में ना ऋण ना घन, पॉजिटिव निगेटिव किसी में भी लगाव नहीं, बस साक्षी। इन्वॉल्व नहीं, भोक्ता भाव से कुछ भी नहीं करना है कोई चीज। अरे ये बहुत ही अच्छी क्लास है, ये भोक्ता भाव हो गया, अच्छी है बुरी है, अच्छा ये अच्छी है ना, फिर इसके बाद कोई दूसरा आके बैठेगा और वो बोर करेगा तो कहेंगे ये बोर हो रहा है, हो गया ना, एक इधर लगा हो गया। एक जो दुखद है वो क्या उत्पन्न करता है, राग, और जो वो उत्पन्न द्वेष, और जो सुखद है वो राग, लाइक्स डिसलाइक्स, अच्छा बुरा, मन इसी को ही आकलन करते रहता है और फिर सोचता है इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। अरे क्यों किया, क्या क्या क्यों किया, साक्षी भाव देखते रहो बस, यही पवित्रता है। कहीं पर भी इन्वॉल्व ना करना मन को, भोक्ता भाव से कोई भी चीज, अगर कुछ खाने को मिला, ये तो बहुत ही अच्छी बनी है आज, बस हो गया राग उत्पन्न हो गया, अरे ये तो बिल्कुल ही टेस्टी नहीं है, बेस्वाद, विकर्षण उत्पन्न हो गया, तो द्वेष उत्पन्न हो गया। ये खेल चालू है, निरंतर चालू है, एक एक क्षण क्षण में चालू है। अरे ठंडी आज ज्यादा है, हो गया द्वेष उत्पन्न हो गया ना, दुखद संवेदनाएं, द्वेष उत्पन्न हो गया। आज मौसम बहुत अच्छा है, राग उत्पन्न हो गया। आज बारिश इतनी क्यों आ रही है, मुझे योग करने जाना था, ये था द्वेष उत्पन्न हो गया, राग द्वेष, राग द्वेष, लाइक्स डिसलाइक्स, आकर्षण विकर्षण, अट्रैक्शन रिपल्शन, वेव्स क्रिएट हो रही है। हमें कुछ भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। ये गीत तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा गीत है ये, कोई भी गीत सुनते रहो सुनते रहो। जब भी कोई नया गीत आता है, दिन भर गुनगुनाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, पहली बार सुना, भगवान हमारा साथी, आंखों से आंसू, अब तो कब बचता है और कब बनता है पता ही, बंद हो जाता है पता भी नहीं चलता, आंसू ही नहीं आते, पहले आंसू आ जाते थे। जय कृष्णमूर्ति ने एक जगह लिखा है, एनी टेक्निक विच हैज बीन रिपीटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकम्स मंडेन। कोई भी टेक्निक, कोई भी गीत, कोई भी ध्यान की पद्धति लंबा समय आप करते रहो तो एक दिन सामान्य हो जाती है, फिर उसमें रस नहीं रहता है। कुछ भी, कोई भी गीत बार बार सुनते रहो। जैसे एक पति है, पत्नी ने उसके लिए भिंडी की सब्जी बनाई, उसे भिंडी बहुत पसंद है, डे वन उसने बहुत चाव से खाई, डे टू वापस भिंडी, डे थ्री वापस भिंडी की सब्जी बनाई, डे फोर वापस भिंडी, डे फाइव वापस, डे सिक्स, डे सेवन भी वही बनाई। यहां पर डे सेवन में पति ने थाली उठा के फेंक दी। वो कहती है क्यों फेंक दिया, आपको तो पसंद है ना। वो भी राइट है, उसका भी तर्क अच्छा है, क्योंकि जो आपको पसंद है वो तो आपको रोज ही अच्छी लगनी चाहिए, और उसको अच्छी लगी भी। छह दिन उसने एक ही सब्जी खाई क्योंकि उसे बहुत पसंद है, पर सातवें दिन उसने थाली उठा के फेंक दी। अब प्रॉब्लम कहां आया, क्या प्रॉब्लम हुआ? उब, उब उत्पन्न करता है कोई भी चीज बार बार रिपीट की जाती है। तो पत्नी भी राइट है अपने रीति से कि भाई तुमको तो पसंद है ना, वो भी राइट है, पर एक ही चीज वही वही रिपीट होती रहती है, वही वही रिपीट होती रहती है। आत्मा समझ बाप की याद करो, आत्मा समझ बाप को याद करो, आत्मा तुम काम महाशत्रु है, काम विकार महाशत्रु है, तुम्हें आदि मध्यांत दुख देता है। एक ही चीज सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुन भी हो गए और उब गए इसके लिए। पर सुनना तो ऐसा कह भी नहीं सकते, कहेंगे तो बोलेंगे अरे रे रे तुम हाफ कास्ट ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, तुमको माया ने खा लिया है, इसलिए ना कुछ कर सकते, ना इधर ना उधर, सुनो बैठो और सुनते रहो, चलो कुछ और ही काम करो, मोबाइल पे कुछ करते रहो या नींद करते रहो, किसको क्या पता चलता है। तो उब उत्पन्न हो जाती है, बोर्डम। इसके लिए नवीनता चाहिए, चिंतन में नवीनता, पढ़ने में नवीनता, लिखने में नवीनता, प्रश्न बनाने हैं मुरली से तो उसमें नवीनता रहेगी, नहीं तो ये ऐसी भिंडी वाली थाली उठा के फेंक दोगे एक दिन, जब बहुत अति हो जाएंगे, कहेंगे मुझे नहीं पढ़नी है मुरली विरली, बहुत हो गया। अब तक तो बेचारे दबे हुए, कैसी भी हो सुननी पड़ती है, क्या करे, मजबूरी है, ऐसा हो गया है। लोक लाज ब्राह्मण मर्यादा, इसलिए बाकी अंदर से कुछ उसका सबकॉन्शियस माइंड का वो कॉन्शियस में भी नहीं टच हो रहा है, इसलिए तो पति पत्नी उब जाते एक दूसरे से। लंबा सा रहते हैं तो क्या हो जाता है, उब जाते हैं बेचारे। पहले पहले कैसे उनको बहुत मिलने की इच्छा होती है एक दूसरे को, छुप छुप के मिलते हैं ना, फिर बाद में कहाँ मिलते हैं, या तो मैं मर जाऊंगा या तुमको मार दूंगा, ये स्थिति आ जाती है। कोर्ट, कोर्ट में तो नहीं, प्यार रहता है पर वो नहीं रहता है, कुछ तो मिसिंग हो जाता है, क्योंकि वही 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 वही। तो हमारा मन क्या चाहता है, नया इस मन को समझना है, इस खेल को समझना है, मन के कैसे वो डाइवर्ट होता है। तो बाबा कह रहे तुम्हारा माइंड कैसा हो, शक्तिशाली माइंड, पावरफुल माइंड की कुछ पहले निशानियां हैं वो हम देखेंगे, और फिर माइंड को पावरफुल कैसे बनाए वो देखेंगे, और दूसरी पॉइंट है यहाँ पर बाबा शब्द। तो ये दो पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पावरफुल माइंड की 8 निशानियां हैं। सबसे पहले पावरफुल माइंड मैच्योर माइंड होता है, परिपक्व। उसमें क्या होता है, परिपक्वता होता है, मैच्योरिटी होती है। पावरफुल माइंड अर्थात जो मैच्योर है, अनुभवी है, उसने पता है उसको, वो तुरंत विचलित नहीं होता है, मैच्योर। मैच्योरिटी होती है ना, एक मैच्योरिटी कैसे आती है, धूप में बाल पकने के बाद ही मैच्योरिटी आती है। तो मैच्योर ये एक निशानी है शक्तिशाली माइंड की, हम कितने मैच्योर हुए हैं। बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, बड़ा मैच्योर होता है, शांत होता है, जो जवान होते हैं उतावलापन दिखाते हैं। दूसरा है स्टेबिलिटी, स्टेबल होता है, बहुत स्थिर। मैच्योर माइंड अर्थात स्टेबल माइंड, तुरंत हलचल में नहीं आता है, कुछ हो गया तुरंत हलचल, ये मैच्योर, ये शक्तिशाली मन की निशानी नहीं है। शक्तिशाली मन अर्थात बहुत स्थिर है, और स्थिर कहाँ है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में जो स्थिर है, ऐसी परिस्थितियां जो हमने कभी सोची नहीं थी वो परिस्थिति आ गई, उसमें स्थिर रहना, ये शक्तिशाली मन की निशानी है। और वो परिस्थितियों से, समस्याओं से घबराते नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, पहले से ही मन को तैयार कर रखा है। जैसे इस लेखक ने लिखा है, कवि ने, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दे नाविक निज पतवार। कहाँ जाना चाहता है, तूफानों की ओर, वहां मत ले चल मुझे, जहां एकदम शांत समंदर है, जहां तूफान है वहां चल। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ से मैं साहस तोलो, कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दे नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न हारी मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दे नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दे नाविक निज पतवार, चल तूफानों की ओर जहां तूफान ही तूफान है, क्योंकि हमें स्टेबल रहने की कला आ चुकी है। हमारे मन ने क्या सीख लिया है? स्थिर रहने की कला। कोई कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, कितना भी बोले, वहां पर हम स्थिर है। जैसे बुद्ध के लिए दिखाते, लोग आए गालियां देने लगे, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। आप तुम्हारे घर कोई आया, तुमने लिया ही नहीं, तुमको वापस। उसने कहा कि हाँ, अगर तुम 10 साल पहले आते तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से देता तब, पर अब नहीं दे सकता ना। अब ये निधि अंदर है, स्टेबिलिटी की, स्थिर हो गया है मन, अब नहीं कर सकता वो। उसके बाद में तीसरा है करेज, साहस, शक्तिशाली मन अर्थात साहसी मन। कठिन जगह पर वो जाने के लिए तैयार है, जहां कोई जाने को तैयार नहीं वहां वो कहता है हाँ ठीक है मैं जाता हूं। खतरे ही खतरे है मार्ग में, पता है, परंतु साहस है, हाँ मैं निकल पड़ूंगा। ब्रह्मचर्य का मार्ग बहुत साहस का मार्ग है, कोई भी ऐरा गहरा नथु खेरा इसमें नहीं चल सकता। ये मार्ग बहुत कठिनाई का मार्ग है, पल पल प्रतिपल एक एक क्षण में यहां सजगता की आवश्यकता है। प्यूरिटी का जो मार्ग है, थोड़ा दिन चलते हैं फिर गिर पड़ते हैं, फिर चलते हैं फिर गिर पड़ते, कितने आकर्षण है इसमें। बहुत साहस चाहिए इस मार्ग पर चलने के लिए। अगली निशानी है शक्तिशाली मन की बैलेंस, वो कभी अतियों में नहीं चला जाता, क्योंकि हमारे मन का क्या है स्वभाव, अति अति में डोलता है पेंडुलम की तरह, एकदम ब्रह्मचर्य एकदम ब्रह्मचर्य एकदम ब्रह्मचर्य, और सीधा काम एक तरफ, फिर एकदम परहेज, फिर सीधा भोग विलास, एकदम उपवास ही कर लिया 4 दिन, और फिर उसके बाद ऐसा टूट पड़े भोजन के ऊपर कि हर 2-2 घंटे में भूख लग रही है। ये ऐसा पेंडुलम, और जब ये मत समझो पेंडुलम जो इधर जा रहा है, जो इधर जा रहा है ना लेफ्ट की तरफ, वो राइट की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है एक्चुअली। इसके लिए बहुत ज्यादा अति अतियों में जाना ही नहीं है, मध्यम मार्ग, बीच का जो मार्ग है ना वही सबसे श्रेयस्कर है, वही मार्ग अच्छा है। तो बैलेंस, कितने प्रकार के बैलेंस है वो आप लिस्ट निकाल सकते हैं, ब्राह्मण जीवन में ढेर सारे बैलेंस है, कई बार इस पर चर्चा हुई है। तो बैलेंस रखना है, एकदम अति में नहीं जाना है। योग 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 तो योग, सब कुछ छोड़ के योग ही कर रहे हैं, सारा छोड़ दिया केवल योग, हमको डिस्टर्ब मत करो, हमको छुट्टी चाहिए सेवा से। जो ऐसे करने गए वो फंस गए, सेवा सेवा सेवा, केवल सेवा ही कर रहे, सेवा ही कर रहे, सेवा कर रहे, बस इसी में सब कुछ समाया हुआ है। बाबा ने कहा सेवा के बिना तुम रह नहीं सकते, अरे पर उसमें ज्ञान छूट रहा है। या तो फिर केवल योग 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 या सेवा सेवा सेवा, ज्ञान को ही छोड़ दिया, ज्ञान के चिंतन मनन को ही छोड़ दिया, सारा चाहिए। तो उसके बाद में दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, जो संकल्प कर लिया कर लिया, बस अब इसको पूरा करना ही है, सोच लिया ना बस हमको करना है करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक संकल्प ले लेना उसको दृढ़ता से पालन करना, एक प्रतिज्ञा कर ली उसको दृढ़ता से पालन करना, जो सोच लिया बस ये करना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए करना ही है, ये भाषा है दृढ़ता की। उसके बाद में शक्तिशाली मन की अगली निशानी है टायरलेसनेस, टायरलेसनेस अर्थात अथक, अथक अथक होके काम करना, थकना ही नहीं, थकान आ रही है, बीमारी हो रही है, अर्थात जरूर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। आत्मा अथक है, आत्मा जब हम सो रहे हैं तब भी सोती है क्या? वास्तव में ये जो शरीर का हृदय धड़क रहा है, पाचन क्रिया हो रही है, श्वास जो चल रहा है, कौन चला रहा है? आत्मा। सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है साइंस की भाषा में, कि सबकॉन्शियस माइंड इज नेवर स्लीप्स, इट इज एक्टिव ऑल द टाइम। बट माइंड भी कहाँ है, आत्मा में है ना, तो आत्मा कभी नहीं सोती, आत्मा अथक है। हाँ वो थकती जरूर है व्यर्थ कर्मों से, पाप कर्मों से। यदि बहुत ज्यादा उत्साह में रहना है तो ये थकान आनी ही नहीं चाहिए। इवन शारीरिक थकान भी आती है गलत आहार से। अगर आप, आपके रक्त शुद्ध है, उसमें कोई भी विष द्रव्य नहीं है, टॉक्सिन्स नहीं है, उसमें वो आहार जा रहा है जो प्राकृतिक है, तो अपने आप ऊर्जा रहेगी, शक्ति रहेगी, थकने का कोई काम ही नहीं। हाँ सो रहे हैं, दो तीन घंटे सो रहे, बस खत्म, आवश्यकता ही नहीं है, सोने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा परिवर्तन शरीर में हो जाता है। तो टायरलेसनेस, उसके बाद में डिटैचमेंट, शक्तिशाली मन अर्थात अभी अभी यहां अभी अभी वहां, अपने मन को कहीं पर भी लगा सकता है। अभी अभी मुरली पढ़ लिया पूरा और एकदम डिटैच सेवा में, अभी अभी सेवा कर रहे, अभी सेवा से एकदम डिटैच, और फिर सीधा ज्ञान के चिंतन में, ज्ञान के चिंतन में से डिटैच। अभी अभी भाषण दे रहे, भाषण देने में भी बड़ा मोह है, ये जो है ना बड़ी माया है। एक बार पकड़ लेता है तो ऐसा लगता है और बोलू और बोलू और बोलू, फिर सामने वाले सो रहे हो जो भी हो उनका कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना काम तो पूरा करना ही है, 15 पॉइंट निकाल के आया, एक भी कम नहीं होना चाहिए, छोप बता नहीं रही है। तो ये भी कभी कभी ये हो जाता है। तो डिटैच, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, माइंड डिटैच हो, डिटैचमेंट की कला सीखनी है। डिटैचमेंट अर्थात कोई भी चीज की उससे डिटैच हो जाना है, और फिर दूसरे तरफ मन लगाना, वो की उससे डिटैच हो जाना। तो दिस इज अ ग्रेट आर्ट, क्योंकि मन क्या है, जो अच्छा अच्छी चीज है ना उसको छोड़ना नहीं चाहता है। किसी व्यक्ति से फोन पे बात करने में वो अगर हमारी स्तुति करता है, तारीफ करता है, अच्छा लगता है उससे बात कर, और जो अच्छे से बात नहीं करता उससे हम थोड़ा दूर रहते हैं। दोनों से डिटैच, इधर से भी डिटैच, इधर से भी। एट वन मोमेंट, विवेकानंद का वाक्य है, एट वन मोमेंट यू आर वॉकिंग इन द फील्ड, एट अनदर मोमेंट यू गेट अप एंड प्रेइंग इन द टेम्पल, एट थर्ड मोमेंट यू गो इन द जंगल एंड गेट लॉस्ट इन समाधि। अभी अभी खेतों में काम कर रहे, दूसरे ही पल किसी की सेवा कर रहे, तीसरे पल मंदिर में प्रार्थना कर रहे, और अगले ही पल इस संसार से कोई मतलब नहीं है, सीधा जंगल में समाधि में प्रवेश कर रहे, और फिर निकल के फिर सेवा, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। माइंड को ऐसा फ्लेक्सिबल बनाना है। और लास्ट निर्भय, शक्तिशाली मन अर्थात निर्भय, जिसे किसी का भय ही नहीं है। जैसे विष्णु हमारा यादगार है, कैसा लेटा हुआ है अनंत आसन में, और ऊपर क्या है नाग, और सागर में लहरें उठ रही है, उसको भय ही नहीं। कितना शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम कैसा वर्णन है उसका, खाली पूजा करने से कुछ होगा? जैसा वो शांताकारम है वैसे तुम शांताकारम हो जाओ, शांत स्थिर, इतनी कठिनाइयों के बीच ऐश्वर्य है, वैभव है, लक्ष्मी पैर चाप रही है, ऐसा चित्र दिखाते हैं, पर वो कितना स्थिर है। तो ये निशानी है शक्तिशाली मन की, पहली बताई परिपक्व होगा शक्तिशाली मन, दूसरा स्टेबल स्थिर, स्टेबिलिटी का अभ्यास करना है। कुछ भी हो जाए उसके लिए स्थूल अभ्यास पहले, अभी ऐसे बैठे हैं ना, दर्द होने दो, आ इसको ठीक करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही रखो इसको, ये इसको भी स्थिर, इससे इसको भी सहन करो, तो स्टेबिलिटी आएगी। तीसरा करेज, साहस, जहां कोई जाने को तैयार नहीं जाओ, देखो क्या होता है, अनुभव बढ़ेगा। माइंड इज लाइक अ स्ट्रिंग, वन स्ट्रेच्ड इट कैन नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। मन जो है ना वो रबर की तरह है, एक बार उसको तान दो ना फिर अपना ओरिजिनल शेप पे नहीं जाएगा, वो तन जाओगे, बढ़ जाएगा। अगली निशानी बैलेंस, एकदम अतियों में जाना नहीं है। अच्छा भोजन है तो क्या खाऊं और कितना खाऊं, तंदूरी रोटी क्या बन गई, रोज एक दो रोटी खाते, आज चार खाई, क्यों आज कोई अच्छी चीज बन गई ज्यादा खाई, क्यों, ये बैलेंस तो हुआ ही नहीं, फिर बीमार पड़ोगे। हाँ दंड तो देगी प्रकृति, तुरंत दंड देगी, फिर वो सहन करने के लिए भी तैयार रहो। अगली निशानी दृढ़ता, तो छोटे छोटे दृढ़ता के संकल्प करने हैं, जैसे छोटा सा एक संकल्प, आज मुझे 3 बार योग निद्रा करनी है, 3 times 20-20 minutes की योग निद्रा। दस मिनट बीच में खाली है, बीस मिनट खाली है, कमरे में जाओ, नीचे चटाई डालो और लेट जाओ, और पूरे शरीर को स्थिर कर दो, शांत कर दो, और अपने करो और अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक देखो, मन ही मन, फिर श्वास को देखो, और फिर पावरफुल संकल्प क्रिएट करो, और फिर शरीर को नीचे छोड़ो और जाओ ऊपर। वो मृत्यु वाला अभ्यास ही 3 बार किया जा सकता है आज। देखो क्या देखेंगे, आईसीयू, आईसीयू से मॉर्चूरी, मॉर्चूरी से चारधाम, चारधाम से वो शमशान घाट, लकड़ी डाल रहे हैं और लोग कह रहे मैं जलाऊंगा, मैं जलाऊंगा, मैं जलाऊंगा, मुझे भी जलाने दो। और फिर देखो अपने शरीर को जलते हुए, ये जल रहा है, ये कितना खिलाया था उसको, कहाँ गया? कुछ भी नहीं रहा। और फिर आग की लपटों को देखो, ये आग की लपटें जा रही है, उठ रही है, और शरीर भस्म हुआ। इस जीवन में जो मेरा नाम था वो गया, इस जीवन में जो मिल्कियत थी गई, पोजीशन थी गई, कुछ भी नहीं रहा, केवल आत्मा रह गई, अनाम। इसको 3 बार अभ्यास करना, टाइम मिला जाओ, अलार्म लगाओ 20 मिनट का, और दुखी नहीं होना। इसमें भी भोक्ता भाव नहीं हो, साक्षी भाव से करना है। भोक्ता भाव होगा तो आंसू आ जाएंगे आंखों में, फिर इसमें दिखेंगे, ये देखो मेरा बॉडी जल रही है, पर ये मेरा बेटा बेटी माँ बाप सब रो रहे, इनका क्या होगा, प्रॉपर्टी दूसरे दिन। लड़ाई, चलो, पर मोह रहता है ना, एक नेचुरल मोह रहता है, ये मोह कैसे टूटेगा, बड़ा गहरा मोह है ये, सबकॉन्शियस लेवल का मोह है, एक दिन में ऐसे नहीं टूटता, ये इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, ये अभ्यास डेली, आज 3 बार, ठीक है, 3 बार मृत्यु दर्शन, लेट गए और मृत्यु। तो ये पहला अभ्यास है, शक्तिशाली मन कैसे बनाएंगे, मन को शक्तिशाली, ये तो बाबा ने ढेर सारी बातें बता दी है। एक तो स्मृति, आज का वरदान है, स्मृति से समर्थी आएगी, स्मृति लाओ। शक्तिशाली माइंड के लिए चाहिए रिमेम्बरेंस, शक्तिशाली माइंड के लिए चाहिए विजुअलाइजेशन, शक्तिशाली मन के लिए क्या चाहिए, शक्तिशाली संकल्प, शक्तिशाली चिंतन, शक्तिशाली योग अभ्यास, शक्तिशाली एकांत, शक्तिशाली मौन, शक्तिशाली अंतर्मुखता, संगठन, शक्तिशाली संगठन, ऐसा जहां संगठन हो वहां जाके बैठ जाओ। मन भटक रहा है, मन में बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है, जाके बैठ जाओ, सबके संगठित वाइब्रेशन से कुछ तो होगा, बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, वहां मेडिटेशन हॉल में योग चालू है, वहां जाके बैठ जाओ। ये नहीं समझो मेरे तो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, मुझे प्रदूषित नहीं करना है, अरे इतना नीचे हो ना, बैठ जाओ, जहां ज्ञान का चिंतन हो रहा है, जहां योग हो रहा है, वहां जाके बैठ जाओ। नहीं तो कुछ सुनो, कोई पुरानी क्लास दादियों की, निकल जाओ यहां से संकल्प के साथ, आज मुझे नक्की के 4 राउंड लगाने हैं, ठीक है, 4 राउंड, एक को कितना टाइम लगता है चलते चलते, 30 मिनट, तो कितना हो गया, 2 घंटा। अभी एक ऐसा क्लास ढूंढो जो 2 घंटे का है, या तो एक ही क्लास 1 घंटे वाला 2 बार सुनना है, और जब तक वो क्लास सुनना पूरा नहीं करूंगा, रुकूंगा नहीं, पूरा 1 घंटा और पूरा फोकस क्लास पे, तो 2 घंटे हो ही जाएंगे। और जब 2 घंटा पूरा होगा और निकलोगे, तब तुम वो नहीं रहोगे जो थे, जिसने चालू किया था वो कमलेश नहीं रहा, अब तो एक क्रांतिकारी, क्या करूं और क्या नहीं, अभी अभी पॉइंट सारे बिल्कुल फ्रेश ताजा माल, बिल्कुल तरावटी माल, अभी अभी हलवा तैयार है, कोई रास्ते में मिलेगा और कहेगा वही समस्या जो हम समस्या से निकले थे, अगर वही समस्या हमें कोई पता, ऐसी पॉइंट उसको पावरफुल सुना देंगे कि बस, अभी हम ही दुखी थे, एकदम उदास हो गए थे, किसी ने कुछ बोल दिया था, और फिर निकले थे, और निकलने के बाद जब आए और कोई सामने से आके कहता है मुझे उसने ऐसा बोला, उसको ऐसा भाषण देंगे जैसे मैच्योर्ड अनुभवी। इतनी शक्ति है चिंतन में, चिंतन में बहुत पावर है। कोई क्लास सुनते रहो, उसका हमारे समस्या से कोई लेना देना नहीं, पर उसकी एक ऐसी पॉइंट जो हमारी समस्या को टच कर देगी और हमें उत्तर मिल जाएगा। हमारी समस्या ही कुछ और है, टॉपिक कुछ और है क्लास का, पर उधर से उधर कनेक्शन हो जाता है और उत्तर मिल जाता है। इसलिए बहुत अच्छा अभ्यास है, संकल्प दे दो आज 3 घंटा। जैसे पिछले कई बार से हमने ऐसा एक अभ्यास किया, यहां से पीस पार्क वॉकिंग गए और आते समय भी वॉकिंग, जैसे यही संडे यहां से निकले, सुबह जल्दी राउंड पूरा कर लिया सब कुछ, यहां से पूरा अपना बैग भर के पीस पार्क वॉकिंग, और आते समय फिर वॉकिंग 3 बज गए, 2 पूरा जाना आना, उधर रुकना, योग करना, तपस्या करना, वो जो रात की क्लास है वो तो यहीं तैयार हो गई चिंतन करते करते, क्योंकि चलते चलते और सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, एकांत है, वो रास्ते में कोई रहता भी नहीं है ज़्यादा, तो ये जो लॉन्ग वॉक्स जो होती है ना, ये बड़ी काम की है, बहुत काम की है। या तो आप लोग जो जाते हो पीछे से अनादरा, पर वो ग्रुप से जाते हो, 2 लोग जाए तो बहुत अच्छा, जिसमें बातें थोड़ी कम हो तो शक्तिशाली मन के लिए शक्तिशाली चिंतन, शक्तिशाली अध्ययन चाहिए, रोज स्टडी होनी चाहिए, न्यू स्टडीज, खाली वही 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 नहीं, थोड़ा सा नया स्टडी करते रहना रोज। 6:15 ठीक है, अभ्यास। तो बहुत सारी विधि है जिससे माइंड शक्तिशाली होते हैं। अभी लास्ट जो बातें कही है बाबा ने, ये शब्द है बाबा, क्या है ये? जादू का शब्द है। कैसे? भक्ति मार्ग नहीं हो गया ये? जादू का शब्द मंत्र जैसा होता है ना भक्ति, एक शब्द बाबा, लेकिन यह एक शब्द जादू का शब्द है। जैसे जादू में स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, वैसे एक बाबा शब्द समर्थ स्वरूप बना देता है। गुण बदल जाते, कर्म बदल जाते, बोल बदल जाते, यह एक शब्द ही जादू का शब्द है। तो सभी जादूगर बन गए ना, जादू लगाना आता है ना, बोलो बाबा, और बाबा का बनाया यह है जादू, यह है जादू। तो ये जो शब्द है, शब्दों में बहुत पावर होती है। मंत्रों में क्यों पावर होती थी? ओम ब्रह्म, ये सारे शब्द है ना झंझनाहट पैदा करते हैं। ओम ये जो है ना ये क्यों ये मंत्रों में आते हैं? क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडीज हुई है, मंत्रों में पावर होती है, वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, एनर्जी लेवल क्रिएट होती है। इसके लिए जो ऋषि मुनियों जो मंत्र तैयार करते थे, ह्रीम, ये सारे जो थे ना, उन शब्दों में पावर है, पर वो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण यथार्थ होने चाहिए तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं। और हमारा शब्द है बाबा, अच्छा परंतु ये भी देखा गया इसमें संस्कृत का कोई लेना देना नहीं, शब्दों का लेना देना, फिर वो इंग्लिश शब्द से भी होगा, संस्कृत से अगर हो रहा है तो हिंदी से भी होगा, इंग्लिश से भी होगा, किसी से भी हो सकता है। हाँ उनमें बहुत पावर है माना, पर वो हिंदी में भी हो सकता है, फिर इंग्लिश में भी हो सकता है, फिर किसी भी शब्द से हो सकता है, किसी भी शब्द से हो सकता है। तो जैसे एक राजा था और उसने सुन रखा था कि एक महात्मा जी आए हैं शहर के बाहर, और वो इतना प्रतापी राजा था और गुणवान राजा था, उसकी इच्छा थी कि मैं कुछ मुझे मंत्र मिल जाए, एक अच्छा सा मंत्र मिल जाए जिसके वजह से मेरा बहुत फायदा हो जाए, मैं उसकी साधना करूंगा, तपस्या करूंगा। वो गुरुजी के पास जाते हैं और कहते हैं वो महात्मा को कि मुझे कोई मंत्र दीजिए। तो महात्मा कहते हैं चलो ठीक है देता हूँ एक मंत्र, उसको एक शब्द का कोई मंत्र दे देते हैं और राजा उसका अभ्यास करना चालू करता है। पहला दिन रात को उसको स्वप्न दिखता है, भयंकर स्वप्न, उसका जो सेनापति है उसने विद्रोह कर दिया है। बाप रे, घबरा जाता है दूसरे दिन, ऐसा तो बाहर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये क्या हो गया। फिर दूसरे दिन मंत्र जाप करता है, रात में फिर भयंकर स्वप्न, विद्रोह नहीं आक्रमण कर दिया है। तीसरे दिन और आगे और स्वप्न देखता है कि अब मुझे पकड़ लिया गया है, मुझे 5वें दिन मुझे मार रहा है, फिर मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया गया है। बाप रे बाप, ऐसे एक एक दिन भयंकर स्वप्न देखता है, घबरा जाता है, कहता है ये क्या हो गया, जब से मंत्र जाप कर रहा हूं ये सब गड़बड़ हो रही है। 11वें दिन उससे रहा नहीं जाता, नहीं पर बीच में 4वें-5वें दिन फिर से उस साधु के पास जाता है, कहता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। वो साधु कुछ नहीं बोलता, चुप, और ही उसको ये होता है ये शायद मंत्र ही खराब है, पर परंतु फिर भी वो गुणवान होता है, श्रद्धावान होता है, मंत्र जाप करते रहता है। 7वें-8वें दिन उसको लगता है ये जो हो रहा है ऐसा वास्तव में तो नहीं है, तो वो अपने 2 गुप्तचरों को बुलाता है और कहता है ये जो हमारा सेनापति है इस पर ध्यान रखो, इसकी कार्रवाई पर ध्यान रखो, ये क्या कर रहा है, क्योंकि ऊपर से तो सब सामान्य दिख रहा है, अंदर से कुछ तो गड़बड़ चल रही है, पर मंत्र जाप चालू रखता है। और 11वें दिन आधी रात को वो 2 सेनापति आते हैं और कहते हैं कि सही में ऐसा ही है, वो तो विद्रोह की पूरी तैयारी करके आज रात को आक्रमण करने वाला है। उसी रात वो सब जाते हैं और राजा उसको गिरफ्तार कर लेता है और जेल में डाल देता है और वो विद्रोह टल जाता है। 12वें दिन वो उस गुरु के पास जाता है, पूछता है ये सब क्या था। वो गुरु कहता है ये मंत्र का प्रताप था जो मैंने तुमको दिया था, तुम्हारा ये जो होने वाला था ये वास्तव में होने वाला था और 11 साल तक तुमको तड़पाने वाला था, पर वो 11 साल की यातना 11 दिन में पूरी हो गई इस मंत्र की वजह से, इस मंत्र का इसलिए जाप करते रहो। और तुमको कौन सा मंत्र दिया गया है? बाबा 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 बाबा, समझ में आए नहीं मंत्र का अर्थ तो भी प्रभाव करेगा, वो तो भी प्रभाव उसका होगा। समझ में भी नहीं आया उसका क्या अर्थ है, किसको पता है ओम रीम और वो स्वाहा, समझ में आता है कि कहीं कहीं फिर भी प्रभाव तो होता है ना मंत्रों का। जिसको ओम का अर्थ नहीं समझ में आया फिर भी ओम ओम करते रहे तो कुछ तो होगा, अंदर में झंझनाहट होती है। ओमकार करो बैठकर 10 मिनट, पावर है उसमें, अनहद नाद है वो। उसी तरह बाबा ने कहा ये शब्द ही मंत्र है। कुछ भी समझ में नहीं आता है बूढ़ी माताओं को, ज्ञान चिंतन कहा, उसको पूछो किसी माता को द्वापर में कितने जन्म होते, नहीं दे पाएगी आंसर। तो बाबा कहते ये बस बाबा बाबा शब्द, ये मंत्र है तुम्हारा, अंदर ही अंदर बाबा 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 बाबा, क्योंकि हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं यूज कर रहे, परमात्मा के लिए यूज कर रहे। तो आज की तपस्या के 2 भाग है, पहला शक्तिशाली मन, पावरफुल माइंड, और वो जो निशानियां सुनाई और उसको बनाना है विजुअलाइजेशन से। 3 बार आज क्या करना है, 20-20 मिनट मृत्यु का दर्शन, वो भी देख लेना मेरे जाने के बाद डिपार्टमेंट में कौन आता है, कौन बैठा है। अरे रे रे रे, देखा मैं तो बहुत अच्छा था, ये तो ठीक नहीं है, पर सब लोग उसकी ज्यादा तारीफ कर रहे, मेरे साथ तो ऐसा करते थे, इसके साथ ऐसा कर रहे, वो सारा ही देख लेना। तो ये जो अटैचमेंट है ना अपने से, शरीर से, नाम से, पद से, कम कम होती जाएगी थोड़ी। तो वो एक अभ्यास, और दूसरा बाबा को क्या कर दो, शब्द को अनहद नाद बना दो, वही रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। ऐसे कितने भक्त थे, उनको इतना थताया गया, मारा गया, हरिदास इतना मारा गया, इतना माराया गया मुस्लिम शासकों ने, परंतु कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसे कुछ भक्त है जिनको मारने के बाद उनको जलाया गया और उनकी हड्डियों में से भी कृष्ण 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 निकलता रहा। किस लेवल पे था वो, सबकॉन्शियस से भी नीचे, बोन के मैरो में चला गया। वो भी देख लेना, हड्डियां जल रही है उसमें से, बाबा 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 शब्द निकल रहा है। अच्छा, ओम शांति।
मूरत बना दिया प्यारे बाबा ने हमको, तपस्वी मूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार के फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने, इस संसार के फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने, से सजा के हमको समर्थ बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया।